की हो रही थी, हालांकि जवाब चाहते हैं कि हम, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूं कि ये जो खबरें, इट इज गोइंग टू मेक यू सिक, इट इज गोइंग टू मेक मी सिक। वी लिव, वॉन्ट टू लिव नॉर्मल लाइफ, जिसमें हंसना बोलना भी है, जिसमें सब कुछ साथ साथ है, एंड ऑफकोर्स आप अपने कंसर्न्स के लिए जरूर एड्रेस करें। इसके बाद 6:40 पे आपकी मुलाकात करवानी है, जनाब साबिर शाकिर साहब हमारे साथ होंगे। देखिए भाइयों, मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पीटीआई के बेशुमार लोग बहुत अच्छे हैं, मगर अगर कोई मुझे कहे, आपको याद होगा शहबाज गिल साहब यहां टोरंटो में भी आए थे एक बार, तो हमारी टीम का कोई शख्स भी नहीं गया था। फवाद चौधरी साहब आए थे, हमारी टीम का कोई शख्स भी नहीं गया था। इवन अगर शादिया साहब गई भी थी तो शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड आई टिल टू डेट मैं फील करती हूँ, आई रिग्रेट कि मेरी टीम का एक मेंबर भी वहां क्यों गया था, ये दो मेंबर भी क्यों गए थे वहां पर। उसकी वजह कि बास पॉलिटिशियंस को, जैसे इस वक्त तरीके, जैसे मुस्लिम लीग नून के साथ एक कोई खातून है जो उनकी मीडिया रिलेशंस की हैं, शी इज सच अ लायर। सेम वे फवाद खान यहां टोरंटो में आए हुए थे, और मुझे याद है हाईवे 27 पे फवाद चौधरी, मैंने क्या कहा, फवाद खान तो एक्टर है, उसको था हॉलीवुड, बॉलीवुड ने उसको बॉलीवुड ने फिर फिल्म में ले लिया, हीरो ले लिया फवाद खान को। अच्छा, तो फवाद साहब आए हुए थे, जो भी फवाद चौधरी साहब आए हुए थे यहाँ पे, वी डिड नॉट गो। शहबाज गिल आए हुए थे, वी डिड नॉट गो। यानी एक इंसान जो सवाए तजहीक के और कोई बात ही नहीं करता, और मैं जिंदगी में अपनी कंपनी को जरूर चेक करना चाहती हूँ, डेफिनेटली। मैंने एक दफा कोई बात कही थी तो मुजफ्फर अली ने मेरी तरफ देख के कहा कि चेक योर कंपनी, ठीक है, ये मुझे अपने पेरेंट्स के जमाने की बात भी ये वाली याद है। तो आई वी डिड, हालांकि हमारा काम है कवर करने का, बट वी डोंट वांट टू कवर दोज कि जिनको जुबान का और बात करने का लिहाज ना हो। अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट करती हूं तो इसका ये मकसद नहीं कि ये मेरा वीक पॉइंट है, ये रिस्पेक्ट करने का मकसद ये है कि This is what it is. I respect others and want to be respected. हालांकि ना आप इज्जत जबरदस्ती दे सकते हैं, ना इज्जत जबरदस्ती ले सकते हैं। आज के प्रोग्राम में साबिर शाकिर साहब आ रहे हैं हमारे साथ। मैं पाकिस्तान के हालात का अगर तजिया करती हूँ तो मेरी होश में जो वक्त है वो जियाउल हक साहब के जमाने के बाद का है। जियाउल हक साहब ने टेक ओवर किया था तो हम वही 10वीं 11वीं 77 के बाद, आप समझ लेना, तो वही 10वीं 11वीं में हम आए थे। वी वर वेरी यंग, स्कूल कॉलेज के बाद का जमाना था वो वाला, एंड दैट्स व्हाट इट वाज। उसके बाद जो मैंने दुगरगूं सूरत हाल देखी, आए दिन दिन ब दिन मैंने हालात को बद से बदतर होते हुए देखा, और ये और ज्यादा बदतरीन होते चले जाएंगे। मगर एक बात याद रखिएगा, ये मेरी जिंदगी में और ये आपकी जिंदगी में भी जरूर गुजरा होगा कि जब आप किसी को बहुत पुश करते हैं ना, तो इंसान पुश होता चला जाता है, ठीक है, दबता चला जाता है। मगर देयर इज अ स्टेज के वो उसके बाद बंदा कहता है, ये मर गया बच गया, ये इस तरह मरना तो उस तरह भी मर जाना है। या जब जमीन में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो फिर क्या होता है, लावा फट पड़ता है। एक गीत है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसको सुना भी करती हूँ। देयर आर कपल ऑफ मोर गीत जो कि मेरी अपनी गाड़ी में ये सीरीज पड़ी हुई है। आई जस्ट ट्रेवल एंड आई लिसन टू दीज सॉन्ग्स। मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारों को मेरे गीतों का पता भी है। देयर आर टाइम्स कि वो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए या मुझे प्यार का इजहार करने के लिए वो गीत लगाया भी करते हैं या मुझे सुनाया भी करते हैं। कैटी पेरी का एक गीत है, और आपको कैटी पेरी को आप जानते हैं, वेरी यंग ब्यूटीफुल गर्ल। जब हिलरी क्लिंटन का इलेक्शन था तो कैटी पेरी ने, उनके जो कॉन्सर्ट्स थे उसमें कैटी पेरी ने गाया था ये गीत। के अगर आप बोल देखें, अच्छा, हम ये समझते हैं कि मगरिब की औरत हमेशा से आजाद थी, मगरिब की औरत हमेशा से आजाद नहीं थी। कैनेडा की भी अगर आप बात कर लें तो आज भी अगर आप ओटावा में जाएंगे तो आप एक टूर लेते होते हैं, जब आप वो टूर लें तो आपको पता चलेगा कि स्कूल थे, स्कूल के एक दरवाजे से औरतें निकला करती, लड़कियां निकलती थी, एक दरवाजे से लड़के, एक ही दरवाजे से इकट्ठे नहीं निकल सकते थे, ठीक। औरतें घर का काम, लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी, आपको याद ही होगा कि लड़कियां और काम करती होती थी, उनकी अपनी एक ड्यूटीज होती थी। अब तो खैर दिस इज 21st सेंचुरी, हालात ही बदलते चले गए। तो ये गीत है कि देयर वाज अ टाइम कि मैं समझती थी कि मेरे राइट्स नहीं है, सिर्फ राइट्स की बात ही ना करने, मेरी मुंह में जुबान नहीं थी और मैं अपने सांस को पी के रखा करती होती थी, और मैं कोई खटका भी होता था तो मैं उसे घबरा जाया करती होती थी, मुझे डर लगता था अगर मैं चीजों को इधर उधर बखेर देती थी तो मुझे खौफ आया करता होता था कि ये मेरी गलती है। मैं बड़ी खामोशी के साथ अपना काम करने के बाद बैठ जाया करती होती थी, और जब भी मुझे कोई बात कहता था यस 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 एग्री पोलाइटली कर लिया करती थी। कहती मुझे शायद पता ही नहीं था कि मेरी कोई च्वाइस है। फिर वक्त और हालात ने चेंज किया। कैसे चेंज हुआ कि जब मुझ पे ऊपर जो लोग थे या वो लोग जिनके ऊपर जिनको मेरे पे इख्तियार था, जब उन्होंने मुझे दबाया दबाया, दे पुश मी डाउन एंड होल्ड मी देयर, तो जब मेरा मुंह पे सांस हाथ रख के मेरा सांस बंद करेंगे तो ऑफकोर्स मुझे सांस लेने के लिए आपको पुश करना पड़ेगा, एंड देन जब मैंने पुश किया तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि आई कैन पुश यू हार्ड। आपने मुझे नीचे गिराया, जब मुझे किसी ने नीचे गिराया एंड मैं फिर उठ के खड़ी हो गई और मैंने अपनी डस्ट को झाड़ा। डस्ट को झाड़ने के बाद फिर तुमने मेरी आवाज सुनी, और वो मेरी आवाज नहीं थी, वो मेरी चिंघाड़ थी, रोर थी। ठीक है, तुमने मुझे क्योंकि नीचे गिराया था, गिराने के बाद मुझे नीचे दबाया था, और मुझे फिर अल्टीमेटली तुमने वो करेज दी कि मैं उठ के खड़ी हो गई और मैं अपने राइट्स के लिए लड़ने लगी तुमसे। आई गॉट द आई ऑफ टाइगर, रोर गीत का नाम है। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, और इट्स इजी सॉन्ग। मैं खुद भी बहुत ज्यादा हार्ड रस्तों पे, वो एक लफ्ज होता है ना कि बहुत औखी जुबान मुझे नहीं आती, तो सादी जी जुबान बोलने वाले हैं, सादी जी जुबान समझने हैं, गाना भी वो सुनने हैं जेड़ा सानू समझ आता हो, जेड़े साड़ी जिंदगी के उत्ते लगता हो। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग रोर। कैसा लगा देखिए साहब, इसको मैं रिलेट करती हूँ पाकिस्तान के हालात के साथ। अगेन हम तो रोते हैं ना यहाँ पे, आप इमेजिन कीजिएगा कि पाकिस्तान में उन्होंने आज वफाकी काबीना ने बिजली के फिक्स चार्जेस में भी इजाफे की मंजूरी दे दी। एंड यू नो व्हाट, घबराहट हुई, मेरा दिल घबराया इसमें। कमर्शियल सार्फिन के लिए महाना फिक्स चार्जेस में 150%, 100% का मतलब है कि अगर आपका हजार रुपए का बिल आता 2000 हो गया, 150 हजार रुपए का बिल आता था 2500 के ऊपर चला गया, और सनदी सार्फिन के लिए 184% इजाफा उन्होंने कर दिया। ठीक, राणा सनाउल्ला मुझे कभी कभी अच्छे भी लगते हैं, कहते हैं भाई 9 मई साजिश थी और पीटीआई मुलव्वस नहीं, तो आ जाओ बैठ के बात कर लेते हैं। हालांकि अब मैं कहती हूँ पीटीआई को चाहिए इससे जाके बात कर ले, मगर देखिए पॉलिटिक्स में कोई इतना हार्ड रूल नहीं होता। दिस इज पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में वी सिट टुगेदर। आप देखिएगा बेनजीर भुट्टो साहब को मरवाया किसी ने, इन्होंने मरवाया था ना, बेनजीर को मरवाया इन्होंने मरवाया था ना, आज यही बैठ के फिर उनके साथ काम कर रहे हैं। चलो जी मियां ना भी करता होगा बेनजीर भुट्टो को, मैं बहुत से लोगों को इतराज है, तुसी बड़ा बेनजीर भुट्टो कर भाई, शी वॉज अ ग्रेट वुमन, शी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शी वॉज जो भी थी बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, वेस्ट से उसने पढ़ी थी, जितना जरदारी साहब ने टफ टाइम दिया था। अब आपके पास और वर्जन है, मेरे पास कुछ और वर्जन है, मगर उस औरत ने अपने आप को डाइवोर्स नहीं होने दी थी। शी इज अ रोल मॉडल, अगर आप इसको ठंडे दिल से सोचें तो शी वॉज अ रोल मॉडल। मतलब मेरा बिल्कुल पिक्चर देखने का एंगल डिफरेंट है। इसी तरह मोहतरमा ये जो इंदिरा गांधी साहब है, हिंदुस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब वही बात है कि हम आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज को भुलाते चले जा रहे हैं। तो राणा सनाउल्ला साहब ने यह कहा कि भाई 9 मई की साजिश नहीं थी, आप पीटीआई को चाहिए। अब पीटीआई अगर ये चाहती है या मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि भाई हाँ जी सारे मर जाएं और वो कहते हैं सुंजिया हो सड़कों के बीच मिर्जा राज करे, लगाए ना जरा बरारुल्ला का गाना, ये दोनों पार्टियां तीनों पार्टियां पाकिस्तान की सारी पार्टियां चाहती हैं सुंजिया हो जन सड़कों के बीच मिर्जा यार फिरे। वो बरारुल्ला का गाना है ना, बिल्लो किने किने जाना बिल्लो दे घर। तो भाई हुकूमतें तो ऐसे नहीं होती, हुकूमतें होने के लिए तो देर इज वन रूलिंग पार्टी, अगर आपके पास नहीं भी अक्सरियत तो आप कोलेशन कर लेते हैं। इसराइल की बात कर लें, अभी आप कनाडा की बात कर लें, अभी आप देख लें फ्रांस में जो इंतहाई दाएं बाजू की पार्टी जो है वो जीत रही है, तो खबे पास दियां पार्टियां जी मोतदिलो कठियां रल के बह गई उदेगी ए ना कि जीत जाए, तो इनको भी चाहिए ये कोई ऐसा ही आपस में भी लड़ लड़ के मरी जा रहे हैं ना। और यहाँ पे वो कहते हैं मगरबी ममालिक से ममालिक के लिए चीन और रूस का यूरेशियाई ममालिक से तावन के फरोग पर जोर है। आई डोंट नो, दुनिया ने सियासत खेलते खेलते आप भी मर जाना तो सानू भी लैके खड्डे च पै जाना। और हाँ जरा गड़े हुए मुर्दे खुदे हुए की बात करें, आपको याद है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म बनी थी, हिंदुस्तान के पास यू नो फिल्म इंडस्ट्री उनका बहुत बड़ा। देखिए आई वेंट टू सऊदी अरेबिया कौन सा था 1985 में, मैं अम्मी जान के साथ गई, तो माय मदर हैड ऑपरेशन देयर, तो आई स्टेड इन द हॉस्पिटल विद अम्मी जान। तो मुझे याद है सऊदी लड़कियों से मेरी दोस्ती हो गई थी, वहीं पे हॉस्पिटल में हम रहे, तो उनका अमिताभ बच्चन और वो फिल्में इंडिया की फिल्में वहां के वहां देखा करती होती थी, मेरा ख्याल वीसीआर पे ही देखा करती होती थी, तो उनका आइडियल था अमिताभ बच्चन उस जमाने में, जैकी शेरफ उनके अमिताभ बच्चन जैकी शेरफ बाद में आए थे, तो अमिताभ बच्चन, मैं बात कर रही हूं 1984-85 की मैं आपसे बात कर रही हूँ। आई स्टेड देयर फॉर 6 मंथ्स के करीब, तो इंडिया की फिल्में वहां पे देखी जाती थी, तो वो फिल्म बनी ना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब 30 साल के बाद वो फिल्म जाहिर है काजल और ये जो अपने शाहरुख खान साहब है इसके गिर्द घूमती है, वहीं से शाहरुख खान ने भी मतलब रिकॉर्ड पकड़ा और उड़ान पकड़ी, और काजल ने भी वहीं से उड़ान पकड़ी। मगर कहते हैं कि ये फिल्म जो बनानी थी ना, एक्चुअली इस फिल्म की स्टोरी में अमेरिकन लड़का था इंडियन लड़की थी, اب کنزرویشن کی بات کر کنزرویٹو چیز میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. ابھی آپ کو میں نے جتنے گانے سنائے ہیں اپنے زمانے کے ہٹ سانگ سے, آپ ان میں کہیں دیکھ لیں شارٹ ڈریس نہیں تھا, کہیں شارٹ ڈریس نہیں تھا کہیں. یعنی انہوں نے اپنے بولوں کے اوپر توجہ دی, انہوں نے اپنی پریزنٹیشن کے اوپر توجہ دی, کہیں انہوں نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی کہ میرے جسم کا کوئی انگ دیکھنے کے بعد اس گیت کو کوئی پسند کرے. نو, ایوری سانگ, جتنے سانگس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے بیچ میں پریزنٹیشن, الفاظ کا چناؤ, دیٹ واز دا مین تھنگ. سیم وے مطلب کس چیز کی میں بات کر رہی تھی, ماجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا رول کر لیں. چلو جی, میں رول کر لیتی ہوں. تو میں پاکستان کی صورتحال کا جب یہ بجلی کے بلوں کا ہی میں تذکرہ کرتی چلی جا رہی ہوں تو مجھے وہاں سے خیال آیا کہ یہ رور جو گیت ہے نا کیٹی پیری کا, یہ بالکل سوٹ کرتا ہے پاکستان کے حالات کے لحاظ سے. آپ بھی حیران ہوں گے بھی پاکستان کے لحاظ سے کیوں سوٹ کرتا ہے, کہ وہ کہتی ہے نا کہ میں بالکل خاموش تھی, مجھے میری آواز کا پتہ نہیں تھا, مجھے سانس لینا نہیں آتا تھا, بس میں دبی ہوئی تھی اور پھر تم نے مجھ کو دبایا اور تم نے مجھے اتنا دبایا اتنا دبایا اتنا دبایا, میں اٹھی, میں نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور اس کے بعد تم نے اب میری آواز سنی. اینڈ ناؤ یو ول ہیئر می رور. دس از واٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان پاکستان. گیٹ ریڈی, آئی ٹیک یو ٹو جناب صابر شاکر صاحب سے ملاقات. کچھ بھی نہیں, سمپل سی بات چیت ہوئی. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ٹیک ہز اسٹانس مختلف چیزوں کے لحاظ سے, اسی پر انہوں نے بات کی ہے. یقیناً عدلیہ کے حوالے سے بھی ہماری بات ہوئی کہ کیوں یہ ساری کی ساری تبدیلی آئی تھی اس کے بارے میں. آئی ٹی این پروڈکٹس ہیں, میں تعاون دیا آئی ٹی این کی پروڈکٹس, یہ گروسری کی پروڈکٹس ہیں. آپ کے کچن میں اے سے لے کے زیڈ تک, آپ کے فریج میں میٹھے کی ضرورت ہے, آپ کو جوسز کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے فریزر کے لیے سبزیوں کی ضرورت ہے, فروزن ویجیٹیبلز, پراٹھوں, نانوں کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ آپ کو دالوں کی ضرورت ہے, آپ کو مسالہ جات کی ضرورت ہے, آپ کو چائے پتی پانی کی ضرورت ہے, ایوری تھنگ. اور نہ صرف ہمارے ساؤتھ ایشین سٹورز میں بلکہ مین سٹریم کے سٹورز میں, لابلاز, والمارٹ, سوبیز, فریشکو, فوڈ بیسکس, میٹرو, ہر جگہ پہ یہ موجود ہیں. کون؟ آئی ٹی این کی پروڈکٹس. آئی ٹی این دیسی کے نام سے ان کی دالیں ہیں, اشوکا کے میسو بیسن وغیرہ ہیں, ہمدرد کی سویٹس ہیں, اس کے علاوہ مینار کے کلاسک چائے. پکا کے دیکھیے گا آپ, اسے لڑکوں سے پوچھیں کتنے اچھے. آج میں پکا کے لائی تھی چاول, کیسے تھے چاول؟ مجھے نہیں کریڈٹ جاتا, چاولوں کو کریڈٹ جاتا, چاول آپ ہی اچھے بن گئے. یعنی میرے جیسے نلائک نلا بھی اچھے پکا لیتا ہے, لمبے چاول, مطلب میرے جیسا نیلا بھی اچھے پکا لیتا ہے. ہاں, پکاتے ہوئے بہت خوشبو آ رہی تھی. نہیں, ہاں خوشبو کا. اب پتہ ہے میجر سنگھ پروگرام کرتے ہیں, میجر سنگھ پروگرام کرتے ہیں سیٹرڈے اور سنڈے کو, چکن کے ساتھ بنا ہوا تھا. تو میجر سنگھ جا رہے تھے یہاں سے, تو جب وہ گزرے, اور آپ یقین کریں, آئی نو میجر سنگھ, ایوری سیٹرڈے سنڈے کو پروگرام کرتے ہیں. سیٹرڈے کو وہ کرتے ہیں پانچ سے لے کے چھ کے درمیان, چار سے پانچ کے درمیان سیٹرڈے کو کرتے ہیں. رچرڈ عزیز کے بعد, رچرڈ عزیز کا پروگرام کریبین پروگرام گانوں پہ بیس کرتا ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. میجر سنگھ کا پروگرام, اس میں کال کر لیا کرے, مانا ایڈر نکل جائے, چڑی جائے دل رہا اس منڈے کا, نکل جائے. تو آج وہ یہاں سے واپس جا رہے تھے نا, تو مطلب چاولوں کو کریڈٹ جاتا ہے. مینار کے چاول میں پکا کے لے کے آئی تھی, آئی وش آئی کین شو یو. تو وہ کہتے ہیں مینو اینی خوشبو آئی, تو ہم نے دیکھا کہ وہ کچن میں کھڑے ہوئے ہیں. تو کچن میں وہ فریج کھول کے کھڑے ہوئے تھے, تو وہ چاول نکال رہے تھے. کہتے ہیں میں تو لنگ رہا سی, میرے کو لنگ نہیں ہویا, تو میں کہا میں تھوڑے سے چاول کھا جاؤں. مجھے اس پہ بہت پیار آیا لڑکے پہ, بہت پتبیز. مگر اللہ کرے کہ میں اور آپ اتنے چھوٹے دل کے ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیا کریں. ایک زمانہ تھا ہم مانگ لیا کرتے ہوتے تھے. اور آج میں نے کھانا لے کے آنا تھا, میرے گھر میں مرچیں ختم ہو گئی تھی, میں نے تو رات اپنے ہمساؤں سے مانگ لی تھی مرچیں. نیچے والے ہمیں بچے کے تین چمچ مرچیں چاہیے, زیادہ نہیں چاہیے, آئی بائی ٹمارو. مگر ابھی میں کھانا پکا رہی ہوں, میرے پاس مرچیں نہیں ہیں. تو آج وہ بہرحال بات ہو رہی تھی آئی ٹی این کی پروڈکٹس کی, تو آئی ٹی این کی پروڈکٹس لے کے آئیے گا تمام گروسری اسٹور پہ آج. بس اب مجھے اجازت, ماجی بھائی کہتے ہیں عارفہ چپ کرو اور نکل جاؤ یہاں سے. अच्छा मैं चली जाती हूँ, खुदा हाफिज।
अच्छा
भाई
तो अब चलते,
अच्छा तो हम चलते हैं,
फिर कब मिलोगे,
कल तुम कहोगे कहाँ,
सची
इसी स्टूडियो में।
चलिए साहब लिए चलते हैं आपको दूसरे स्टूडियो में, जहां पर आरफा जी बात करेंगे साबिर शाकिर से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और उसके फौरी बाद फिर आज क्योंकि जुमेरात है तो भूली बिसरी यादें
है। जुमेरात को पाकिस्तान में कहते थे जुमेरात खराब का दिन होता है,
जुमे से पहले।
बाय द वे एक बच्चा है फाहद, आज मुझे इंडस के बारे में जो रिपोर्ट मिली है, व्हाट अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, और मैं डॉक्टर बारी की मोतकिद थी, मैं और ज्यादा मोतकिद हो गई। और ये लड़का साइबर सिक्योरिटी पे काम करते हैं फाहद, उसी साइबर सिक्योरिटी के चक्कर में ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड व्हाट दीज एजेंसीज आर डूइंग, ही स्पोक टू डॉक्टर बारी एंड हमारे यहाँ के जो टोरंटो से डील करते हैं उन्होंने इतना कॉपरेट किया और कहते हैं दे हैव डन सच अ ग्रेट जॉब, जितना उन्होंने सामान पाकिस्तान भेजा है दवाइयों का और इक्विपमेंट का, अनबिलीवेबल। इंडस हॉस्पिटल।
चलिए साहब तो स्टूडियो नंबर टू एंड आरफा जी एंड साबिर शाकिर।
जी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आपकी एक मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया जिन्होंने एक्सेप्ट किया। ही इज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जिन्होंने अपना मास्टर्स किया, जर्नलिज्म में ही मास्टर्स किया, और उसके बाद आप पाकिस्तान के एक बड़े टेलीविजन स्टेशन के साथ एंकर भी रहे। और जाहिर है मैं ये कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात बाज़ लोग जस्ट मुख्तलिफ जगहों पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं वक्त की टेक्नोलॉजी बदलने के साथ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, मगर जर्नलिज्म में जो चीजें सिखाई जाती है, वी डू नॉट क्रॉस आर लाइन्स, वी डू नॉट यूज अल्फाज का चुनाव यकीनन खास हुआ करता है। जनाब साबिर शाकिर साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान के एआर टेलीविजन के ऊपर आपने अपनी एक अरसे तक खिदमत अंजाम दी। मैं कभी कभी पाकिस्तान के लिए बहुत कंसर्न हुआ करती थी, तो टाइम के डॉक्टर्स हुआ करते थे तो डॉक्टर्स एक दूसरे की को सपोर्ट करते थे, जर्नलिस्ट थे तो जर्नलिस्ट एक दूसरे का, क्योंकि आज उसके साथ है तो कल मेरे साथ हो सकता है, इसी तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मगर मुझे लगता है अब तो हर एक को अपनी 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 पड़ी हुई है। मैं परवेज मुशर्रफ साहब का दौर याद करती हूं कि एमरजेंसी लगती है तो वकीलों ने जनाब एक जगह एक जान दो कालब होके अपनी बात मनवा दी थी, बट आज वो बरतानिया की जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, एंड डिवाइड एंड रूल किसी और ग्राउंड के ऊपर नहीं, नंबर वन प्रमोशन इज द इंसेंटिव एंड द सेकंड इज ऑफकोर्स पैसे के ऊपर, मनी टॉक्स हर चीज को खरीदा जा सकता है। साबिर शाकिर साहब आपका बहुत शुक्रिया सर कि आप मेरे साथ इस वक्त शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, और आपसे जब भी गुफ्तगू हुई बहुत अच्छी हुई, बहुत कंस्ट्रक्टिव हुई, तो इंशाल्लाह आज भी कोशिश करेंगे।
मैं दगरजनू हालत के बारे में जिक्र करती हूँ कि देयर वाज अ टाइम के जिस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ अगर कभी ज्यादती हुआ करती थी तो डिपार्टमेंट के जो बाकी लोग फील्ड में हुआ करते होते थे वो मुत्तहिद होने के बाद अपनी बात को मनवा लिया करते होते थे, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, बट अनफॉर्चुनेटली आज की सूरत हाल में ये एक जमाने में बरतानिया वालों ने ये चीज रिवायत डाली थी डिवाइड एंड रूल के, अलग अलग मिलो और अलग अलग करते हुए लोगों को ऐसा तोड़ो कि भाई भाई के खून का प्यासा हो जाए। तो इस सूरत हाल पे मैं थोड़ी सी आपकी इनपुट लेना चाहती हूँ क्योंकि हमारी रिफ्ट्स बढ़ती चली जा रही है।
पहले तो सिर्फ तोड़ा जाता था फिक्री और नजरियाती एतबार से, तो अब तो बाकायदा हड्डियां तोड़ी जाती हैं और जिस्म तोड़े जाते हैं, वजूद तोड़े जाते हैं, आजकल तो ये हो रहा है। लेकिन जो आपने बात की उसमें वो एक जमाना था नजरियाती होना और एक आइडियोलॉजी को लेके चलते थे, सही होती थी गलत होती थी बहुत अच्छे तरीके से, फिक्री नशिस्तें होती थी। अब वो चीज नहीं है, अब जरा थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक अप्रोच आ गई बहुत ज्यादा, और अब माली मफादात बहुत आ गए हैं ऊपर भी, यानी कि अगर आप मीडिया मालकान को ले लें तो उनके अंदर भी बहुत ज्यादा माली मनफियत, माली मफादात, इश्तिहार, प्रोफेशनलिज्म के बजाय कमर्शियलिज्म बहुत ज्यादा हो गई है, और यही चीज फिर हमारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट की क्लास है उसमें भी ये बहुत ज्यादा चीज आ गई है। तो उसकी वजह से अब ये जो आवाजें हैं बहुत कमजोर हो गई, नहीं आवाजें हो गई हैं, नहीं उठती। यहां तक के शहीद अरशद शरीफ हुए कत्ल और उनके साथ जो दिन रात सुबह दोपहर शाम उनके साथ बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे घरों में, क्योंकि बहुत मिलनसार थे शहीद अरशद, तो वो भी खामोश हैं, वो भी इतने मजबूर हैं। किस किस्म की मजबूरी है, खौफ है, डर है, हर तरह की, कुछ विलिंगली और कुछ अनविलिंगली, वो भी खामोश हैं, वो भी नहीं बोल रहे, क्योंकि हुक्म हाकिम है कि आपने उस तरफ नहीं जाना, तो लिहाजा नहीं जा रहे। इसी तरीके से अगर हम नेशनल पॉलिटिक्स पे आ जाएं, नेशनल जर्नलिज्म पे आ जाएं, तो वहीं पे भी यही सिचुएशन हो रही है। और जो भी जितनी भी आवाजें अब तक एक नहीं पाकिस्तान में अगर देखें, बेशुमार आवाजें खामोश करवा दी गई हैं और उनका मुआशी कत्ल जिसे कहते हैं, हालांकि बुनियादी इंसानी हकूक में शामिल है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको करता है, प्रोटेक्ट करता है कि जान माल आबरू और रिस्क और रोजगार का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे बुनियादी हकूक हैं, एक पूरा चैप्टर है। लेकिन उसमें ये पहली दफा हो रहा है कि वो एक एक करके सारे बुनियादी हकूक जो है सलब किए जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है, नेशनल पॉलिटिक्स ले लें, नेशनल जर्नलिज्म ले लें, उसमें एक एक करके मुआशी कत्ल किया जा रहा है और बहुत सारी आवाजें हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो खामोश करवा दी गई हैं, जिनको ऑफियर कर दिया गया है, उनमें बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ा और बहुत कम वक्त में ये ऐसा रजीम चेंज ऑपरेशन है कि बहुत सारे, उसमें अगर हम नाम गिनवाना शुरू कर दें तो शहीद अरशद शरीफ से लेके इमरान रियाज हैं और आरफ अमीर भट्टी हैं, समी इब्राहिम हैं, सदीक जान हैं, खालिद जमील हैं, शाहिद असलम हैं। इसी तरीके से आज का वाकया है कि मोहसिन बिलाल एक रिपोर्टर हैं लाहौर के, उनको या उनकी जॉब खत्म करवा दी गई पंजाब सरकार ने, मरीम साहिबा ने, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपोज किया था 100 डेज की जो कारकर्दगी थी, उनको आज ऑफियर नहीं बल्कि जॉब खत्म करवा दी गई है। तो ये सिलसिला जो है ये मुसलसल चल रहा है, लेकिन इस पे कोई मुअसर आवाज अगर आप कहें तो वो वाकईतन नहीं है और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है कि एक प्रेस रिलीज इशू कर दिया जाता है, एक मजम्मती बयान कर दिया जाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर एक पंजाब में खासतौर पे आज ही उसकी हियरिंग थी हतक इज्जत बिल के नाम से, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गला घोंटने के लिए किया गया है, उसमें भी आज लाहौर हाईकोर्ट में हियरिंग थी, उसमें भी रिमार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं ऑनरेबल जजेस के, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा ये देखना पड़ेगा। और उधर फेडरल लेवल पे पीका है और उधर अब प्रोविंशियल जो सूबाई हुकूमतें, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सूबाई हुकूमतें जो है वो लेजिस्लेशन अपनी अपनी कर रही हैं और अपनी अपनी जो सूबाई सल्तनतें हैं उसके अंदर वो कहते हैं कि किसी किस्म की इंटरवीन भी नहीं होनी चाहिए और कोई आवाज भी नहीं उठनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया सर। आवाज नहीं उठनी चाहिए से मुझे दो तीन चीजें मेरे दिमाग में आई। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया था जिसमें इस्तेहकाम का बड़ा जोर शोर है और ख्वाजा आसिफ साहब ने कोट अनकोट में उन्हीं के वर्ड्स हैं, उन्होंने फरमाया था कि ऑपरेशन फौज की नहीं हमारी जरूरत है। तो पॉलिटिशियंस की जरूरत इसलिए है कि मेरा ख्याल है कि मुल्की अंदरूनी और बैरूनी खतरात के बारे में तो शायद ये लोग बाद में सोचते हैं, कि अपनी जिन लोगों को नापसंद करते हैं उनको उठाया जाना, उनको अगवा कर लिया जाना। क्या ये अजमें ये जो उनका बयान है कि ये फौज की जरूरत नहीं हमारी जरूरत है, तो ये कोई उस तरफ की निशानदेही कर रहा है कि जो आवाज उनके खिलाफ उठे या जो शख्स उनकी मर्जी के बगैर बात करना चाहे, इवन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फौज के साथ 30-31 साल तक काम किया है, उनको भी बिला जवाज गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इज इट कि ये जो नया एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रही है ये गवर्नमेंट, तो ये हर उनके खिलाफ राय रखने वाली की जमहूरियत का गला इस तरीके से घूंटेंगे?
ये काम थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है और पहले दिन से ही मुझे अंदाजा था कि ये एक मामूल का रजीम चेंज नहीं है। इसको कवर तो दिया गया था एक जो साइफर के जरिए ये सारा कुछ किया गया था, लेकिन हकीकत में जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है वो ये है कि रूल कौन करेगा। ये पहला मौका है कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझ रही है, और को मेरा ख्याल है कि शायद सही समझ रही है, वो ये समझ रही है कि अगर इस दफा हमने इस जो बगावत है उनके ख्याल में, ये सिविल बगावत है, इसको अगर हमने ना कुचला तो फिर हमारे जो इख्तियारात हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और हमारा रोल जो है वो बहुत कम रह जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें कि मुस्लिम लीग नवाज वो ऑलमोस्ट उनको भी टीका लग चुका, वो एक वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी और इस वक्त नवाज शरीफ साहब को जगह नहीं मिली। पीपल्स पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट की स्थायी हुई है और वो बजाय कंप्रोमाइज कर लेते हैं वो अपनी जगह, लेकिन है। उसके बाद फिर ये थर्ड पार्टी जो तीसरी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब उनके साथ एक उन्होंने फड़ा ले लिया, पंगा ले लिया, और उसमें हुआ यह कि उनको अंदाजा नहीं था शायद इस बात का कि ये इतनी ज्यादा मजाहमत हो जाएगी, या ये इतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको मम्मी डैडी या बर्गर फैमिली समझा जाता था ये अंदर से इतनी मजबूत है, उनको अंदाजा नहीं था जो मैं समझाऊं। और इसीलिए उनका ख्याल था कि ये बस यहीं के लोग हैं, बस आते हैं, धरना वरना होता है और जलसा होता है, सुनते हैं और चले जाते हैं, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया और अभी भी कर रहे हैं। और फिर 8 फरवरी को उनके सारे अंदाजे जो है वो गलत साबित हो गए। हालांकि माजी में होता यह था कि माजी में जिस पे उंगली रखती एस्टेब्लिशमेंट ने कि जनाब ये पार्टी है और इन लोगों ने आना है, तो सारे के सारे जो वोटर सपोर्टर जो है वो सारे शिफ्ट कर जाते थे। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ। इस दफा पाकिस्तान के लोगों ने ये समझा कि जी बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की तो ये जमातें हैं और ये जो है मजाहमत कर रहे हैं, ये दूसरी जमात है। उनको ये भी पता था कि इनको इख्तदार में नहीं आने देना, इसके बावजूद उन्होंने उन्हीं को वोट दिया और सब कुछ करने के बावजूद उस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल अदा किया, काजी साहब ने अपना रोल अदा किया, सब ने अपना 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 हिस्सा डाला, लेकिन वो ये काम नहीं कर सके। अब अगला स्टेप था, इनका ख्याल था कि फॉर्म 47 दे दिए और 9 मई की वजह से खौफ हरास भी बहुत फैल गया है, तो लिहाजा ये दोबारा नहीं उठ सकेंगे। फिर अगर आप रिकॉल करें तो फिर एक इनकी असेसमेंट थी, फैसल वाड़ा जो माउथपीस है इनके, उन्होंने ये कहा कि ये 30% जो है वो जो आजाद लोग जीतेंगे उनमें से 30% जो है वो तो आ जाएंगे ये हुक्मरानों की तरफ, हुक्मरान जमातों की तरफ, जिस तरह उधर इशारा होगा। 32% जो है वो नजर ही नहीं आएंगे और बाकी रह जाएंगे 25-30% लोग, वो जो हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही अपना बोलेंगे और करेंगे। वो भी इनका अंदाजा गलत हो गया और उसमें भी वो 81 लोग, इन्होंने 81 लोगों को फॉर्म 47 दिया, वो 81 के 81 ही बरकरार हैं और अभी तक बरकरार हैं। ये सारे का सारा उनका सीन जो है वो नहीं चल पाया। फिर अगला स्टेप आया, उसमें ये था क्योंकि एक होता ये था कि पहले माशाल्लाह जब लगता है, माशाल्लाह के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो जितने भी वो गैर कानूनी गैर आइनी काम किए होते हैं उनको इंडेमनिटी दी जाती है थ्रू पार्लियमान। तो थ्रू पार्लियमान इंडेमनिटी देके वो सारे जो गैर आइनी गैर कानूनी काम है उनको लीगल कवर दे दिया जाता है। तो इस दफा भी इन्होंने ये जो 2/3 मेजोरिटी का सीन था, क्योंकि मखसूस नशिस्तें भी उठाई और वो भी उनको दे दी, उसका मतलब ये था कि हम अपनी मर्जी से कुछ तरामीम कर लेंगे। तरामीम करके ये जो कुछ भी 8 फरवरी तक और उसके बाद हुआ है उस पर पर्दापोशी कर दी जाएगी, हम आगे बढ़ेंगे। अब वो भी नहीं हो पा रहा। अब अज़्म इस्तेहकाम, अब आपकी सवाल की तरफ अब आ जाता है जी, अब क्या करें, तरीकाकार सोचा जाए, क्योंकि गलती पर गलती किए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, मकसद है कि किसी भी तरीके से हम पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लें। नून लीग बहुत बड़ी तगड़ी जमात थी वो फारिग हो चुकी है, उसके पल्ले अब कुछ नहीं है। और पीपल्स पार्टी वो सिंध तक महदूद है और वो भी अंदरूने सिंध तक, शहरों में कुछ नहीं है, क्योंकि इनसे बेहतर कौन जानता है जिन्होंने ये सारे रिजल्ट फॉर्म 47 तकसीम किए हैं, और जिन्होंने लिए वो भी जानते हैं, जिन्होंने दिए वो भी जानते हैं कि ग्राउंड पे इनकी कोई, ग्राउंड पे रूट्स कोई नहीं है। अब जब भी इलेक्शन होता है किसी भी सूरत में होगा, अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको कोई नहीं हरा सकता, उनको आउट नहीं किया जा सकता, बल्कि उससे बढ़कर आएगा। उसकी रीजन मैं आपको बता दूं कि जो हर रोज जो है वोटर जो है वो पीटीआई का वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे 18 साल की उम्र में लोग दाखिल हो रहे हैं वो वोटर बढ़ता जा रहा है, और वो वोट नया वोटर आ रहा है वो पीटीआई का है, और ये जितना ज्यादा डिले करेंगे उतने ज्यादा वोट जो है वो बढ़ते जाएंगे। एक साल इन्होंने डिले किया था तो तकरीबन 10 मिलियन जो है वोट उसमें और आ गया था, 10 मिलियन का इजाफा हो गया था। अब ये हर साल ये उसी अंदाज से चले जाएंगे, तो इनको वो जो पीछे इनसिक्योरिटी है ना कि ये जैसे ही ये इलेक्शन अनाउंस होता है, साल बाद हो, दो साल बाद हो, और ये सारा कुछ इसी तरह रहता है, तो वो आएगा, इमरान खान आएगा, पीटीआई आएगी, वो तो बड़ी पॉलिटिकल वो एक पावर के साथ आएगी, पब्लिक सपोर्ट होगी, तो फिर आ जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ। एस्टेब्लिशमेंट ये जितना भी माजी में काम किया जाता था फिर थ्रू जुडिशरी किया जाता था, अब इस दफा ये हुआ कि पीसीओ जजेस तो थे नहीं, तो इन्होंने जजेस के घरों तक पहुंच गए, वो बेडरूम तक पहुंच गए, जब वहां पहुंचे तो वहां से मजाहमत हुई, वो मजाहमत इतनी हुई कि अब वो ऊपर काजी साहब के अलावा नीचे सारे निकल चुका है मामला, उनके हाथ से निकल चुका है, वो कालीन, वो कहते हैं ना पांव के नीचे से कालीन जो है वो सिरक चुका है, तो ऊपर काजी साहब अकेले रह गए, नीचे सारी जुडिशरी जो है वो दूसरी साइड पर खड़ी हो गई। अब जुडिशरी से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, अब जुडिशरी से इन्होंने ठप्पा लगवाना था, जैसे जस्टिस मुनीर से लगवाया, जैसे जस्टिस अरशाद हसन से लगवाया, वहां से ठप्पा लगवाना था वो ठप्पा नहीं लग रहा, वहां से अगेन अब काजी साहब हैं वो खत 100 वोटों को लेके बैठे हैं, मखसूस नशिस्तें हर हियरिंग पे, अब ये पहला मौका है कि काजी साहब बताते हैं कि फलां जज को मैनेज कर लें, फलां को कर लें, ये बहुत बोलता है, ये बहुत बोलती है, वो फिर उस पर होते हैं, वहां पे कामयाबी नहीं हो रही, हर हियरिंग पे आते हैं और देखते हैं राइट लेफ्ट, देखते हैं कि नहीं नंबर पूरे नहीं है, वो आगे चले जाते हैं। तो ये सारे का सारा एक बैकग्राउंड चला आ रहा है, यानी ना इनके पास जुडिशरी बची, ना इनके पास मीडिया बचा, क्योंकि मीडिया जिनको सपोर्ट कर रहा है उनकी आवाज कोई नहीं है, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट नहीं है, और जुल्म जो है असल मामला जो है जुल्म वो हर गली में पहुंचा हुआ है, हर मोहल्ले में पहुंचा हुआ है, और हर मोहल्ले में कोई ना कोई वाकया हुआ हुआ है, कि पुलिस गर्दी हो गई, पोस्ट गर्दी हो गई, उठाया गया, अब लोग देहातों तक पहुंचा हुआ है, और ये सारी चीजों को अगर आप जहन में रखें तो अब क्या है तरीका। अब अच्छा उसके बाद ये तो दाखिली है, खारजी तौर पर आ जाए, खारजी तौर पर खारजा पॉलिसी को ले लें, तमाम दोस्त ममालिक आपको छोड़ चुके हैं, सऊदी अरब छोड़ चुका है, यूएई छोड़ चुका है, आपका मिडल ईस्ट दोहा है, कुवैत है, जितने भी कोई आपको एक डॉलर देने के लिए तैयार नहीं है, फिर आप हमसाया ममालिक पे आ जाए, ना अफगानिस्तान से बनती है, ना ईरान से बनती है, ना बनती है आपकी चाइना, इंडिया से तो शुरू दिन से, इवन चाइना भी अंदर से दुखी है, वो भी एक साइड पे बैठ गया है। उसके बाद आप मगरबी ममालिक में आ जाए, अमेरिका की कांग्रेस की करारदाद आ गई, यूएन की वर्किंग ग्रुप का आ गई 17 पेजेस की, ये सारी चीजें आ गई, और उसकी वजह क्यों आई, उसकी वजह ये आई कि इनको झूठ बोला गया कि इमरान खान साहब जो है वो सोलो फ्लाइट करके रशिया गए थे, तो उनको अब पता चल गया कि नहीं सोलो फ्लाइट नहीं, ये तो सारे ऑन बोर्ड थे और हमें झूठ बोला गया, वो वहां से वो सोच तब्दील हो रही है। फिर अमेरिका में एक नई चेंज आ रही है, वो क्योंकि बाइडेन इंतजामिया को इन्होंने मैनिपुलेट किया था, अब बाइडेन इंतजामिया जाने से पहले अगर 368 मेंबर रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाएं ये सारे के हालात कितने खराब हो चुके हैं। ये कोई 368 मेंबर जो है वो कोई लॉबी के जरिए लॉबिस्ट हायर करके नहीं होता, क्योंकि अंदर भी कोई बिल होती है, उनके पास भी कोई इंफॉर्मेशन, पॉलिसी शिफ्ट है, इस सारी चीजों को करके जी अब ये रेलिवेंस करना चाहते हैं। रेलिवेंस है कि कोई ना कोई अफगानिस्तान में कोई अपनी जरूरत पैदा की जाए, और इस रीजन में जो एक होता था कि जी हम बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हैं और हमारी जरूरत किसी ना किसी को रहती है, लेकिन चूंकि बदकिस्मती से हम सबको ही कर चुके हैं, दो दो हाथ कर चुके हैं, सारों के साथ ही कर चुके हैं, तो अब वो सारे समझ चुके हैं कि नहीं, इन लोगों से तो बात नहीं हो सकती, अब कोई साफ सुथरा सिस्टम आएगा और जिसको पब्लिक सपोर्ट भी होगी, जिसके साथ जुडिशियल सिस्टम भी होगा, जहां पे मीडिया भी आजाद होगा, तभी हम कुछ करेंगे, और उस वक्त तक वो फुल स्टाफ लगा के बैठे हैं। अब ये अजम इस्तेहकाम भी उसी तरह का था। अब अच्छा, बेस कैंप क्या है, अजम इस्तेहकाम इन्होंने शुरू कहां करना था, वो करना था खैबर पख्तूनख्वा में। अब खैबर पख्तूनख्वा में पीछे चले जाए, स्वात ऑपरेशन, दर्दुल फसाद, उस वो जमाना था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का एक माहौल बना हुआ था, तो लोगों ने भी कहा कि चले ठीक है, मिलिटेंट्स आ गए हैं तो हम मिलकर साफ करते हैं। हम भी जाते थे उधर, हर जुमा हफ्ता इतवार पहुंच जाते थे, कवरेज करते थे, सब कुछ दिखाते थे कि ये जो कुछ हो गया है। लेकिन अब वहां पे ये हो रहा है कि अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, अब इनको खतरा है कि किसी वक्त भी जब भी कोई चीज उठेगी, तहरीक उठेगी, लोग उठेंगे, वो एक ऐसी जगह है कि वहां से लोग आएंगे और वहां पे बिल्कुल जीरो, इनका जीरो प्रेजेंस है, और वहां पे अब वो माहौल नहीं है कि अब आप जाएंगे और कहेंगे कि आप जगह खाली करते हैं, हमें ऑपरेशन करना है, तो वो नहीं मानेंगे। वो 40 साल से बेचारे इस मुसीबत में शिकार हैं। तो अजम इस्तेहकाम का मतलब भी ये था कि वहां पे किसी ना किसी तरह से कुछ स्पेस क्रिएट की जाए और अपनी प्रेजेंस, और उसके बाद फिर चीजों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये सारा कुछ इस बुनियाद पे हो रहा था, और बुनियादी मकसद इसका ये है कि हम सारी चीजों को अपने कंट्रोल में कैसे लें, वो हो नहीं पा रही, और सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि पाकिस्तान के अवाम जो है उसकी बहुत बड़ी अक्सरियत वो ये बात समझ चुकी है और वो अब बात सुनने के लिए तैयार नहीं। फिर सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया, अब वो सारी चीजें, हर जो जिसके पास स्मार्टफोन है वो एक उसकी अपनी आवाज है, वो अपनी आवाज इजहार करता है और सारा कुछ करता है। तो ये एक है असल में ये स्ट्रगल जो हो रही है, ये सिर्फ पावर गेन करने के लिए और पावर वापस लेने के लिए।
बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी डिटेल में इस बात को शेयर किया। मेरा कंसर्न इस वक्त ये है कि काजी फायजीसा साहब बात करते हैं तो वो जहां अपनी मर्जी की बात होती है तो यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपियन कंट्रीज या इंग्लैंड की एग्जांपल दे दी जाती है, तो वहां जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हकीकत में लोगों के लिए कि जमहूरियत का मकसद क्या है, कि हम एग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं दूसरे की आवाज को दबाने के लिए, ये गलत टैक्टिक्स का इस्तेमाल ना किया जाए, तो ये अपने पे उन कवानीन को इम्प्लीमेंट नहीं करते। इस वक्त पाकिस्तान में मर्जी की हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट की, हालांकि जरदारी साहब ने ये मेक श्योर किया था कि तीसरी कुव्वत जो है वो मैनिपुलेट उसको नहीं करने देना चाहिए, मगर ये पॉलिटिशियन ही मैनिपुलेट हो रहे हैं। आज उसी मैनिपुलेशन में पाकिस्तान की अदाकारें, एक्टर्स, यानी जो भी बंदा अवाम को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसके जरिए इस हुकूमत की तारीफें और गुण गाए जा रहे हैं। तो डू यू थिंक कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो और मजीद बेवकूफ नहीं बनेंगे?
लोग बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनेंगे और लोग बन भी नहीं पा रहे, यही सबसे बड़ा खतरा है, और इसके अलावा कोई खतरा नहीं है। पहले लोग खामोश हो जाते थे और इनको स्टार्स समझते थे, और मुझे पता है कि ये बेचारे मासूम लोग हैं, मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, और इनको तो कहा जाता है कि जी आप ये रिकॉर्ड कर दें, मुझे पता है ये रिकॉर्डिंग किसने करवाई है और कैसे सोर्स हासिल किए गए और ये जनरेट कहां से हुआ, ये इस्लामाबाद से नहीं हुआ, ये क्योंकि इस वक्त असल जो प्रॉब्लम है इस फेक सिस्टम को बचाने के लिए जो इस वक्त मौजूद हैं हमारे ये सियासी कारकुन, सियासी अदाकार, उनको बचाने के लिए सियासी अदाकारों से ज्यादा इनको लाने वालों को ज्यादा फिक्र लाहक है, और वो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे चेहरे जो मुझे नजर आ रहे थे और आपको भी नजर आ रहे हैं, मुझे पता है कि ये कब कहां और किन किन तकरीबात में ये सब देखे जाते हैं, किसी एक तकरीब में अगर इन सबको देखना हो तो ये तो है प्रोफेशनल लोग हैं, और इनको हो सकता है कोई पे भी किया हो, तो इन्होंने वो स्क्रिप्ट उनके सामने रखा होगा, तो मुझे तो उन पे इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन पब्लिक जो है वो बहुत अच्छी तरह जानती है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन है कि बिजली का बिल हर घर को मुतासर कर चुका है, गैस का बिल हर घर में जा रहा है, और दूध जो है इस वक्त ये जो कीमतें बढ़ी हैं, नया बजट 370 रुपए का एक लीटर दूध का डब्बा हो गया है, और अगर डब्बे का दूध 100 रुपए पर लीटर 30 जून को वो था 270 का, और यकम जुलाई को अगर 370 का हो गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन ये मैं भी अगर यहाँ पे आज तकरीर शुरू कर दूं, और ये सारे जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, और वो भी अगर तकरीर शुरू कर दूं, तो पब्लिक नहीं मानेगी, पब्लिक इसको नहीं बाय करेगी। उसकी रीजन है कि वो बेचारे तो हर घर तो जल रहा है, और कौन सा घर है पाकिस्तान में जो मुतासर नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक खुशहाल तबका होता था जो अपनी मदद आपके तहत चलता था, वो था किसान तबका। अब पंजाब में 65% जो है वो किसान है। अब उनकी जो फसल के साथ इन्होंने किया है, गंदम की फसल के साथ, और वो रही सही कसर वो भी पूरी हो गई, वो भी इतनी मोटी मोटी बद्दुआएं दे रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि हर घर में हर किसान को तकलीफ पहुंची है, खा वो 2 एकड़ का था, खा वो 10 एकड़ का था या 50 एकड़ का था, उसको उसकी अपनी जो 6 महीने की दिन रात की मेहनत है वो वापस नहीं मिली। तो ये तो है सिचुएशन। इसलिए तमाम ये अदाकार इकट्ठे हो जाएं, सहाफी इकट्ठे हो जाएं, मैं और आप सब मिलकर भी गर्दान पड़नी शुरू कर दें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें कोई बेहतरी या कोई तब्दीली आएगी। तब्दीली तब आएगी जब लोगों को कोई सहूलत मिलेगी।
मेरे सर आपसे इनको ये उतावले हुए थे कि किसी तरह से, मुझे याद है आपने तो कुछ और कहा, मगर जब रजीम चेंज आया था तो सारे भागे दौड़े फिरे थे, महंगाई हो गई महंगाई हो गई महंगाई, हूं तो महंगाई तो सस्ती हुई कोई नहीं है, मगर इनको मेरा ख्याल है मुसीबत पड़ी हुई थी कि सेनेट के इलेक्शंस ड्यू थे कि सेनेटर्स इनके अपने आ जाएं। अभी आप देखिएगा कि फायज ईसा साहब भी आए हैं, कहा जाता है कि फायज ईसा साहब भी ना ना ना, हमारे एक 770 के एक एसोसिएट जो पाकिस्तान में हमें सर्विस कर दे रहे हैं, ही इज कवरिंग ये जो हमारी अदालतों की कार्रवाइयों को पिछले 31 साल का उनका तजुर्बा है। तो मैं वही एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रही थी कि जितने जजेस थे, चीफ जस्टिस थे, जब वो आए ना 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 करते हुए उन्होंने एक्सटेंशंस कबूल की, तो काजी फायज ईसा साहब भी इज वर्किंग हार्ड टू डिलीवर व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिशमेंट। अभी जस्टिस नीलम की जो अपॉइंटमेंट हुई है, 2 सीनियर्स को कहा गया है कि उनको एलिवेट कर दिया गया है, शायद उनको रिजाइन करा लें या उनको क्या उनके साथ होता है, 2 सीनियर्स कैसे एक जूनियर के तहत काम करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वोटिंग के जरिए ये नॉमिनेशन हुई है, और जब हम जस्टिस सादिया की बात करते हैं, नथिंग अगेंस्ट हर, मगर she is only working for them because Imran Khan ki jo janab Rafiq sahab judge ne jo unki zamanat ki thi usko inhone barkhast kiya tha, jo Tahirul Qadri sahab ke bare mein jo case tha Supreme Court ke case ko revert kiya tha inhone High Court ne, to inhone High Court Punjab bhi Chief Justice apni marzi ka laga liya, kuch kahenge yani अंधेर नगरी चौपट राज है इस वक्त, तो क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे। लोग अब महसूस भी करें, लोग तो बेबस हैं, मगर क्योंकि इनके पास इख्तदार है और छड़ी वाले भी इनके साथ हैं, बंदूक वाले भी इनके साथ हैं, तो क्योंकि तो अपनी मर्जी का हर बंदा अपॉइंट कर लेंगे, और वहां तो पैसा ही बोल रहा है मुझे लगता है। सिर्फ
देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन सब की जो मुसीबत इनको पड़ी हुई है वो ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कुछ इन्होंने किया उसको ये चाहते हैं कोई लीगल कवर मिल जाए, झूठा सच्चा कोई भी। वो जो झूठा सच्चा लीगल कवर मिलना था वो थ्रू पार्लियामेंट मिल सकता था, थ्रू गवर्नमेंट मिल सकता था, और थ्रू जुडिशरी मिल सकता था। वो लीगल कवर और लीगल सिक्योरिटी नहीं मिल रही, और उसकी रीजन ये है कि जुडिशरी जैसा कि मैंने पहले किया, काजी फायद ईसा साहब के नीचे सारी जुडिशरी मोर देन 95% जो है वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही, और यही सबसे बड़ी मुसीबत इनके लिए बनी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के ये इस वक्त सारी जो पहले होते थे पीसीओ जजेस ना, तो जो मैं अर्थ कर रहा था पीसीओ जजेस के से काम लिया जा सकता है क्योंकि वो पीसीओ के तहत हलफ उठाते हैं, आईने एक साइड पर रख देते हैं। ये पहली दफा ये करना चाह रहे थे कि हम मार्शल ला भी ना लगाएं, पीसीओ के तहत जजेस भी, इन्हीं जजेस से हम अपने पसंद के फैसले ले लें, तो वो नहीं हो पा रहा। और इस वक्त जो आपने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का देख लें कि मलिक शहजाद साहब को सिर्फ इसलिए हटाया कि सबसे ज्यादा जो फॉर्म 47 है या रिगिंग हुई है वो हुई है पंजाब में, और तख्त लाहौर भी फॉर्म 47 की पैदावार है और तख्त इस्लामाबाद यानी जाति उमरा की जो सल्तनत है, अगर इन मोहरों को बचाना है तो वो सिर्फ एक सूरत में बच सकते हैं कि फॉर्म 47 को जायज करार दे दिया जाए और जितनी भी इलेक्शन पेटिशन हैं और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जो तनाजात हैं उनको दरियाबुर्द कर दिया जाए। ये बुनियादी काजी फायद ईसा साहब इस वक्त सबसे बड़े जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं, जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, सबसे बड़े सहूलतकार वो बनकर सामने आए हैं इस सारे मामले में, सबसे बड़े सहूलतकार, और सबसे ज्यादा वो इनको तहफ्फुज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, चीफ जस्टिस इनकी ख्वाहिश पे चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद साहब को हटाया गया क्योंकि वहां पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर फैसले करने हैं फॉर्म 45 के, और इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 30 हलके खुल चुके हैं, 30 हलके पंजाब इस्लामाबाद के खुल चुके हैं फॉर्म 45, और ये अदालतों में नहीं जा रहे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये नहीं जा रहे, ये वहां से फरार इख्तियार करते हैं और इलेक्शन कमीशन पहुंच जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि जी हमें बचाएं। आज भी काजी साहब ने जो काम किया है वो लाहौर के पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को सस्पेंड कर दिया है जो कि ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हैं, जहां पे केसेस चल रहे हैं और जो हिसाब मांग रहे हैं। कल पतन की रिपोर्ट आई है, सिर्फ लाहौर का ऑडिट किया, लाहौर के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 21 हलके वहां पे फॉर्म 45 है ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने अपलोड ही नहीं किया, और उसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, उसमें मरीम साहब भी शामिल है, और जो अपलोड किए आप देखें फोर्जरी कितनी हो रही है और उसमें दीदा दलेरी कि फॉर्म 45 फॉर्म 46 की जगह भी फॉर्म 46 अपलोड किए और फॉर्म 45 की जगह भी फॉर्म 46 अपलोड किए, फॉर्म 45 अपलोड ही नहीं किए क्योंकि है नहीं। अब मेरे सामने पड़ा है एक मरीम साहबा के हलके का, वो हैंड रिटन हाथ से लिखा हुआ फॉर्म 45 है जबकि वो बाकायदा तौर पर टाइप्ड होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, ये यहां तक इन्होंने किया हुआ है। मेहर शराफत जो है वो मरीम साहबा से के मुकाबले में वो अपनी पेटिशन लेके गए हुए हैं, अब वो वहां पे मोहलत मांगी जा रही है कि हमें फॉर्म 45 जमा करवाने के लिए रिकॉर्ड जमा मोहलत, तीसरी मोहलत ली जा चुकी है। इधर क्या किया है, आज दो काम हुए, आज एक तरफ काजी साहब ने सस्पेंड कर दिया पंजाब तख्ते लाहौर को बचाने के लिए कि आपको कोई खतरा नहीं है, दूसरा क्या किया सेनेट में आज एक लेजिस्लेशन हुई है जिसमें रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करने का कानून है, वो आज सदर मुमलिकत साइन फरमा देंगे और उसके बाद वो कानून बन जाएगा, फिर ये रिटायर्ड जजेस को लेके आएंगे। इलेक्शन चोरी किसने किया, इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन करवाया किसने, इलेक्शन कमीशन ने, चोरी किसके लिए किया गया, हुक्मरानों के लिए, और अब ये दोनों मुजरिम है, दोनों मुजरमान जो हैं वो ये अपनी पसंद के जजेस लगाएंगे, अपनी पसंद के रिटायर्ड जजेस, उनकी तनख्वाह उनकी मराद इनके कंट्रोल में होगी और उन्हीं जजेस से वो अब ठप्पा लगवाएंगे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का, और ये सारा कुछ इस तरीके से हो रहा है। ये जो बैटल है वो इस वक्त जुडिशरी के जरिए ही लड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये इसीलिए चीफ जस्टिस ये काम आपको बताएंगी कि ये इफ्तिखार फैसल साहब ने भी किया था साकिब निसार साहब के साथ, और आपको याद होगा बहुत तनाजा चल पड़ा था, और फिर गिलानी साहब की, आई थिंक गिलानी साहब की और इफ्तिखार चौधरी साहब की शायद वो मुलाकात हुई थी, और रात 12-1 बजे तक बहुत हंगामा खेजी रही, और साकिब निसार साहब को भी लाहौर से इसलिए निकाल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया था कि वो वहां पे उस वक्त तंग कर रहे थे। तो ये इस वक्त लाहौर जो है, लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, ये मरकज है इस लड़ाई का, इस बैटल का, ये जो पॉलिटिकल बैटल लड़ी जानी है, क्योंकि मोर देन कोई 70% जो है, 70-80% वो सारे के सारी जाली सीटें हैं, और लाहौर के 21 हलकों की पतन की रिपोर्ट आ चुकी है ऑडिट, और वो मजीद आगे कर रहे हैं। फाफन की रिपोर्ट आ चुकी है, बिल्ड एक्ट की आ चुकी है, और इतनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं एनजीओ की, फिर कॉमनवेल्थ के जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए थे वो रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। तो ये सिचुएशन है, तो इसको कवर करने के लिए जाली निजाम को ये सारा कुछ किया जा रहा है।
बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब, मैं बल्कि जब भी मैंने अपने जो हमारे साथी ई आवाज के लिए लाहौर के साथ हमारी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, साबिर शाकिर जाहिर है जर्नलिज्म जर्नलिस्ट रहे, मगर इन्होंने सियासियात में अपना यानी पूरी दस्तरस रखते हैं। बहुत दुख होता है साबिर शाकिर साहब, इस मुल्क के लिए जिए, इस मुल्क के लिए सांस लिया, मगर लोग अपने इक्तदार के लिए पैसे की हवस में, पोजीशन की हवस में जब गलत कर रहे हैं तो ऑफकोर्स दिल खफा जरूर होता है। आज लोगों के लिए क्या एडवाइस करेंगे आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पे? मैं आज बल्कि एक पुरानी थी मेरा ख्याल तस्वीर कि मियां साहब बैठे हुए हैं, मरियम नवाज साहिबा बैठी हुई हैं, और आसमा शिराजी साहिबा उनके साथ जहाज में सफर कर रही हैं। ये जो मुंह बोलती तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ लोगों को बताती हैं। कुछ अपना पैगाम यहां पर दे दीजिएगा लोगों के लिए।
लोगों के लिए यही है जी कि स्ट्रगल करें, मायूस नहीं होना, स्ट्रगल करें और अपनी प्रेजेंस शो करें, और अपने हकूक के लिए निकलें भी, और अपने हकूक के लिए जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपना इजहार नहीं करेंगे तब तक ये मुमकिन नहीं है। और अगर आप घरों में बैठ जाएंगे खामोशी से और हर जुल्म बर्दाश्त करते जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि कोई बेहतरी आए, क्योंकि अल्लाह ताला भी ऐसी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना आए या स्ट्रगल ना करे। तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम माजी में देखते हैं कि जो तहरीकें कामयाब हुई तो वो उस वक्त होती हैं जब आम आदमी जो है वो सिर्फ गुस्सा ना करे बल्कि अपना एहतजाज, पुरमान एहतजाज रिकॉर्ड करे। खा वो 77 की तहरीक है, खा वो वुकला तहरीक है, और उस तरीके से पुरमान एहतजाज जरूर करे, क्योंकि दुनिया देखती है कि दुनिया भी वो देखती है कि पब्लिक क्या कर रही है, अवाम को कोई ख्याल है या हम सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के और वर्किंग ग्रुप में बैठ के वर्किंग ग्रुप कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और ख्याल कर रहे हैं और ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो वो सारे फिर देखते हैं कि जिन लोगों के लिए हम कर रहे हैं वो तो आराम से बैठे हैं, तो उनको जरा पीसफुली बाहर निकलना चाहिए, जो कि उनका आईनी हक है।
क्योंकि अब मैं जाते जाते मुझे पता है मुझे ऊपर से भी इशारा हो रहा है, मंसूर अली खान साहब ना मरियम नवाज साहब ने उनको इंटरव्यू भी दिया, मगर आई थिंक
घरों में तो काम खराब किया है।
आई लव यू, वो मुझे कंट्रोल कर देंगे, बस ये दुनिया से कंट्रोल से चल रही है। मंसूर अली खान साहब को मरियम साहबा ने इंटरव्यू दिया, मुझे याद है तब भी उन्होंने बड़े क्रॉस क्वेश्चनिंग जो की थी कि उनकी गाड़ियों के बारे में और वही तोशाखाना के हवाले से बात हो गई थी। ही इज एक्सपोजिंग अलॉट टू दिस गवर्नमेंट, जो गलतियां भी ये कर रहे हैं, और यू डू यू थिंक कि अल्टीमेटली इनका हाथ उनकी गर्दन पे भी आ जाएगा? मुझे तो उस आदमी पे भी तरस ही आता है कि बंदया तू फंसया के फंसया।
ये बचेगा तो कोई भी नहीं, ये तो है, ये तो कानून कुदरत भी है और कानून भी है, बचना किसी ने नहीं है। ये नहीं हो सकता कि वो शराब का बंदोबस्त किया जाए और उसको कहा जाए कि नहीं ये सिलेक्टिव होगा, ये नहीं होगा। तो इसीलिए असल खौफ ही ये है, जो इनसिक्योरिटी का मसला ये है।
بہت شکریہ جناب صابر شاکر صاحب آپ کی موجودگی میں. آئی نو یو ہیو ٹریمینڈیس نمبر آف فالوورشپ, لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں بیکاز وی آر بیسیکلی ریڈیو اسٹیشن ہیئر ان ٹورنٹو. تو ہمارا دل تھا کہ آپ کو راہ چلتے جو ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں ہم آپ کا نقطہ نظر وہاں تک بھی لے کے آئیں اپنے کنسرنس کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان کے ہیں. بہت شکریہ فار یور ٹائم, تھینک یو ویری مچ سر. آل دا بیسٹ صاحب, شاکر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم لیا. ڈفرنٹ اسٹینس لوگوں کا جو ہے ہم اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہاں پر بعض اوقات آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی کے ساتھ ہے, الٹیمیٹلی پاکستان ہے اور آج ایک پارٹی کل دوسری پارٹی, سفر کون کر رہے ہیں. آج کا جو بجٹ بھی آیا تو آپ دیکھیے گا.